और जो शाकुनी का सहारा लेकर कूड़ कपट करता है शतरंज खेलकर सब कुछ लूट लिया तुम्हारा, लाक्षाग्रह में पांडवों को जलाने का प्लान किया, ऐसा दुष्ट दुर्योधन मजा कर रहा है और हम लोग दुख भोग रहे हैं, तो भगवान को इतना तो कहो कि हम इतना भजन कर रहे हैं तो हमारा लिए जरा अच्छा कर दे और दुष्ट को सजा दे दे। युधिष्ठर ने सुंदर जवाब दिया। युधिष्ठर बोलता है कि किसी को सजा दे ये भगवान को हम क्यों कहें, तो उनके कर्म ही उनको सजा देंगे, और हमारे दुख मिटा दे ये हम उसको क्यों कहें। हमारा प्रारब्ध दुख का है तो दुख बीत रहा है, हम दुख मिटाने के लिए भजन नहीं करते, दूसरे को सजा दिलाने के लिए भजन नहीं करते, लेकिन भगवान भजन करने योग्य है, भजन से हमें आनंद आता है, दुख सुख का प्रभाव छूट जाता है, इसलिए हम भजन करते, भजन करना चाहिए। अरे काई करा, मैं तो कथा में गया और मेरे को बेटा नहीं हुआ, 5 साल हो गया। अरे काई करा, मैं तो कथा में गया, मेरा छोरा को अभी तक शादी नहीं हुई। अरे मैं तो एक का मंदिर में जाता हूँ, मेरी नौकरी नहीं लगी। तो तेरे को भगवान में प्रीति नहीं, नौकरी में प्रीति है, छोरे छोरी में प्रीति है, लेकिन कुछ समय तो ऐसा भी लगाना चाहिए कि भगवान के लिए कर्म करे। अपने स्वार्थ के लिए तो कुत्ता भी पूंछड़ी हिलाता है, काई बात है। तो मनुष्य जन्म स्वार्थ 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 से गंदा हो गया। कुटुंब में झगड़ा क्यों होता है कि यज्ञार्थ कर्म नहीं करते, अन्यत्र कर्म करते, स्वार्थ से करते तो कुटुंब में कलह होता है। बड़ा भाई छोटे भाई को नहीं पूछेगा अगर स्वार्थ का अंधा घोड़े पे बैठा है तो, यज्ञार्थ कर्म करेगा तो बड़ा समझेगा कि छोटा है, मेरा भाई है, उसका भरण पोषण करना, उसका मन लेना, ये वो करना। परदेश में धन वैभव तो है लेकिन यज्ञार्थ कर्म की बहुत कमी है, लोग बड़े अशांत हैं, दुखी है। और यहाँ भी जो लोग स्वार्थी हैं वे लोग अशांत हैं, दुखी हैं, लेकिन जो यज्ञार्थ कर्म करते हैं, थोड़े में से थोड़ा, टुकड़े में से टुकड़ा, कुटुंब में बांट के खाते, समाज में बांट के खाते, उनके हृदय में जो सुख शांति और चैन है वो अरबों पतियों के हृदय में नहीं मिलता है। जयराम जी की। तो भगवान कहते हैं कि जो यज्ञार्थ कर्म करते हैं वो तो बंधन से मुक्त होते हैं, लेकिन जो अन्यत्र कर्म करते हैं वे बंधन में आ जाते हैं। जो कर्म छोड़ के आलसी होके बैठे, खाया पिया और सोए रहे, गप्पे लगाते रहे, समय बर्बाद करते रहे, वे दूसरे जन्म में पेड़ पाषाण आदि हल्की योनि में चले जाते, फिर जबरन कुदरत उनसे कर्म करवाती। रात को कैसी आंधी तूफान के साथ बरसाती बौछार हुई, कितना सहन करना पड़ा पेड़ों को, ऐसा धमाधम झकझोर दिया तूफान ने। कभी तूफान झकझोर देता है तो कभी ताप उनको तपा देती है, तो कभी अतिवृष्टि उनको अजीर्ण कर देती, तो कभी अनावृष्टि उनको भूख मार देती है। तो ये वे लोग होते हैं जिन्होंने यज्ञार्थ कर्म नहीं किया, मनुष्य जन्म स्वार्थ में लगा दिया, तो दूसरे जन्म में बन जाओ पेड़ पौधे लता और वृक्ष, जबरन कष्ट सहो और फिर अपने लिए कुछ न रखो, फूल भी दूसरों के लिए, फल भी दूसरों के लिए, टहनी भी दूसरों के लिए, थड़ भी दूसरों के लिए, क्योंकि तुमने पाया है। ग्लास अगर कह देता कि मैं लोगों की प्यास बुझाता हूं तो पागल है। ग्लास अगर कह दे मैं लोगों की प्यास बुझाता हूं तो वो पागल है। दिया अगर कह दे तो मैं लोगों का अंधकार मिटाता हूं तो पागल है। दिया अंधकार अपनी ओर से नहीं मिटाता है, तेल मिलता है तभी वो अंधकार मिटाता है। गिलास अपनी ओर से प्यास नहीं बुझाता है, वो पानी आता है तभी वो प्यास बुझाता है। ऐसे आप कह दो मैं दुख मिटाता हूं तो दुख हारी श्री हरि की सत्ता तुमको मिली, दुख हारी श्री हरि की बुद्धि तुमको मिली, दुख हारी श्री हरि का सूरज का यूटिलाइज तुम करते हो, दुख हारी श्री हरि की धरती तुमको रहने को मिली, दुख हारी श्री हरि की हवाएं तुम लेते हो, तभी तुम दूसरों के दुख दूर करने में निमित्त बनते हो। तो अपने को खुशहाल मानो के भगवान ने हमको अवसर दिया, उन्होंने मौन मंदिर बनाया। गुरुवार को उद्घाटन था मौन मंदिर का, दानमल हो बैठे, उनके साथ ही बोलते दानमल या हम लोग, एक मौन मंदिर तो क्या 100 मौन मंदिर बना के आश्रम को अर्पण कर दे, फिर भी हम बदला नहीं चुका सकते, आश्रम के तरफ से जो हमको शांति मिली, सत्संग मिला, नया जीवन मिला, तो ये उत्तम करता है। और नहीं तो बोले हमने मौन मंदिर बनाया है, हमारा नाम लगना चाहिए तख्ती पे, दुनिया में नाम होना चाहिए, तो ये राजसी कर्म है। तो राजसी कर्म से सात्विक कर्म ज्यादा फलदायी होता है, ज्यादा सुखदायी होता है। दिखावटी भी अच्छा काम करे तो अच्छा ही है, तख्ती लगा के भी जो बिल्कुल नहीं करते वो तख्ती के बहाने भी कम वक्त करते तो अच्छा है, जय राम जी। लेकिन तख्ती वक्ति की परवाह नहीं है, भगवान तो देख रहे आगे। छुपके भी पाप कर्म करते तो उसका फल मिलता है, तो छुपके पुण्य कर्म करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा। भगवान को और गुरु को रिझाया, राजी कर दिया, और गुरु ने भगवान ने अपना मानकर हमको डांटा, तो अगर सात्विक आदमी के देखो, गुरु ने हमको अपना तो माना, हम बड़े भागशाली। अगर राजसी है बोले हम तो इतनी थी सेवा करे और गुरु ने डांटा, काहे कर, ठीक है अपना भाग्य। और तामसी है तो गुरु की निंदा करने लगेगा, तो जो थोड़ा बहुत पुण्य होगा उसका नष्ट हो जाएगा। हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना, हो वही पाप गौ घात समाना। हरि गुरु निंदक दादुर हो वही, हरि की और गुरु की निंदा जो सुनता है जिस कानों से, उसको गौ हत्या करने का पाप लगता है। जो निंदा करता है वो मेढक बनता है, टैटे करता ही रहेगा। फिर चलो हम नहीं जानते भगवान को गुरु को, उनकी महिमा हो जाने, भगवान करे अच्छा। चलो जो हो गया जो बीत गई। तो जो अपने जीवन में निस्वार्थ कर्म नहीं करता वो मनुष्य जन्म पाकर बर्बादी के रास्ते जा रहा है। स्वार्थ रहित कर्म नहीं करेगा तो योग्यता डेवलप नहीं होगी, विकसित नहीं होगी। अपने स्वार्थ के लिए तो कुत्ता भी पूंछ हिला देता है, अपने दो बेटे बेटों को तो कुत्ती भी पाल लेती है, क्या बड़ी बात हुई, कुत्ता भी पाल लेता है। लेकिन ईश्वर प्रीति के लिए जो कर्म करे उसको बोलते यज्ञार्थ कर्म। तो यहां गीता के तीसरे अध्याय के नौवें श्लोक में भगवान बोलते हैं, तुम फिर से उच्चारण करो, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र,
यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र,
लोको अयम कर्म बंधन,
लोको अयम कर्म बंधन,
तद अर्थम कर्म कौन्तेय,
तद अर्थम कर्म कौन्तेय,
तद अर्थम कर्म कौन्तेय,
तद अर्थम कर्म कौन्तेय,
मुक्त संगह समाचर,
मुक्त संगह समाचर।
यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर, परोपकार के कर्म करके अपने हृदय को परमात्मा के रंग से रंग डाल। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। वह वैष्णव है, वह भगवान का है जो दूसरों के दुख दूर करने के लिए, और बड़े में बड़ा दुख है जन्म मरण, बड़े में बड़ा दुख है भगवान से विमुख। जो भगवान से विमुख लोग हैं उनको भगवान के सन्मुख करना ये बहुत ऊंचा कर्म है। जो ईश्वर से विमुख है उनको ईश्वर के सन्मुख करना ये बहुत बड़ा काम है। इस काम में भागीदार होना ये भी पुण्य। आचार्य विनोबा भावे, उसके पास एक आदमी आया, बोले बाप जी मैंने घोड़ा खरीदा है, वो घोड़ा मेरे को बैठने ही नहीं देता, बहुत अच्छा घोड़ा है, मेरे नौकर को बैठने देता है, वो तो आया बस उसको लेके हवा हो जाता, मैं जाता हूं और मेरे को लाते मारता। बाप जी ने एक मिनट शांत होकर अपने आत्मा में डुबकी मारी, बोले तुमने घोड़ा लिया है, घोड़े को अपने हाथ से कभी दाना खिलाया? बोले नौकर चाकर खिला देते। बोले नौकर चाकर खिलाते तो नौकर को बैठने देगा? अपने हाथ से तो उसको दाना खिला, फिर अपने हाथ से उसको जरा प्यार कर, पुचकार कर, तो उसको पता चले कि ये मेरे को स्नेह करता है, मेरे को खिलाता है, तो उसके हृदय में भी तेरे लिए भाव होगा। आप तू ले जाएगा चाबुक तो उठाएगा लात, आइस आउट यू आउट विल कैरी डर्ट आउट, मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। तू नौकर के हाथ से भेज देता है नहीं, अपने हाथ से खिला। आदमी ने 8 दिन तक दाना पानी घोड़े को खिलाया और फिर उसी घोड़े पर सवार होकर बाबा जी के दर्शन करने आए। बाबा जी ने पूछा क्यों कैसे, बोले महाराज जी तो जादू हो गया, आपने कौन सा मंत्र कर दिया। बोले मंत्र ये है, जो देता है वो पाता है, जैसा करता है वैसा भरता है। तो यज्ञार्थ कर्म सत्कर्म निष्काम कर्म करने से बुद्धि का विकास होता है, अंतःकरण में शांति सुख आता है, चैन की नींद मिलती है। और जो स्वार्थ से कर्म करते, दूसरों को लड़ाते भिड़ाते और अपना उल्लू सीधा करते हैं, ऐसे उल्लुओं को तो महाराज यहां भी सुख नहीं, परलोक में भी सुख नहीं। राजा की सवारी जा रही थी, एक लड़का अपनी मां की उंगली पकड़ के, किशोर अवस्था था, भीड़ में कहीं गुम न हो जाए इसलिए मां की उंगली पकड़ के देख रहा राजा की सवारी। किशोर अवस्था करीब पार कर चुका था, अभी जवानी आने की तैयारी। मां मां मुझे राजा से मिलना है। मां ने कहा बेटा तेरा पिता स्वर्गवास हो गया, एकलौता मेरा लाल, हम लोग गरीब भी हैं, तू खास पढ़ा लिखा भी नहीं, और तू राजा से कैसे मिल सकता, और मिलेगा तो राजा तेरे को क्या हम देगा या क्या बात। नहीं मां मेरे को राजा से मिलना है। बोले तू राजा से मिल, मिलना चाहे तो मिल, लेकिन मैं मिलने का तरीका बताती हूं, तो तू ऐसा मिलेगा कि राजा तेरे से अलग नहीं होगा। बोले मां ऐसा कौन सा तरीका। बोले तू यज्ञार्थ कर्म कर, राजा को खुश करने के लिए कर्म कर, ईश्वर को खुश करने के लिए कर्म कर। राजा का महल बन रहा है, वहां जाकर तू काम में लग जा, आलस्य मत करना, काम चोरी मत करना, और 8-8 दिन में दाढ़ी, जो दाढ़ी का काम करते रोज का, उनको 8-8 दिन में पगार मिलता है, 2 टाइम रोटी भी मिलती है और पगार भी मिलता है, फिर 8 दिन में जो कुछ रुपया 1.5 रुपया रोज का होता होगा उस समय। जब पगार बांटने आए मंत्री तो पगार मत लेना। बोलना कि राजा साहब का महल है, इसमें क्या पगार लूं, मेरे को तो सेवा मिल रही है, भाग्य मेरा। ऐसे करके तू पगार मत लेना और सेवा तत्परता से करना, दूसरे करे उससे सवाई सेवा करना, लेकिन बदला कुछ नहीं चाहना, तो तेरे कर्म यज्ञार्थ हो जाएंगे। राजा तो खुश हो जाएगा, वो महाराज भी खुश हो जाएंगे, परमात्मा भी। लड़के ने वो महल बनना था, वहां अपना काम लग गया, 1 हफ्ता हुआ, सबको मिला पेमेंट, उसने नहीं लिया। 2रा हफ्ता हुआ, उसने बोला मेरे को नहीं चाहिए। 3रा हफ्ता हुआ, मंत्री को इनकार कर दिया। महाराज उसका तो बड़ा है प्रभाव पड़ा मंत्री पर। मंत्री ने जाकर राजा को सुनाया कि ईश्वर गुरु और समाज का विरोधी कर्म न हो। जयराम जी की, अब बाहर से तो सेवा है लेकिन ये सेवा में नहीं गिना जाएगा। ड्राइवर हो तुम्हारा, ड्राइवर सेवक तो हो, लेकिन गाड़ी चला के खड्डे में डाल दे तो सेवा हुई कि बदमाशी हुई। जयराम जी की, रसोई तुम्हारा सेवक तो हो, लेकिन शक्कर के जगह पर नमक डाल दे खीर में तो सेवा हुई कि बदमाशी हुई, बेवकूफी हुई। तुम्हारा दोस्त तुम्हारा सेवक तो हो, तुमको प्यार करते करते तुम्हारी आंख में उंगली घुसेड़ दे तो सेवा है कि बदमाशी है। तो सेवा का भाव के साथ साथ सेवा का ज्ञान भी होना चाहिए। जयराम जी की, सेवा के भाव के साथ साथ सेवा का ज्ञान भी होना चाहिए, सेवा में तत्परता भी होनी चाहिए। तो कर्म ऐसे करें कि अपने कर्म पूजा बन जाए, अपना कर्म बंदगी हो जाए। तो उस लड़के ने 3रा हफ्ता का पगार आया, वो भी नहीं लिया। मंत्री बड़ा प्रभावित हुआ, राजा को जाके कहा लड़का है जवान, तो अभी जवानी उसकी आ रही है, लेकिन महाराज इस उम्र में उसके जीवन में जो तत्परता है, काम करने का हौसला है, वो तो गजब का है, बदला कुछ नहीं चाहता है, बड़ा निस्वार्थी लड़का है। ऐसा करके मंत्री ने प्रशंसा की। निस्वार्थ काम करने से आदमी का चेहरा खिला रहता है, बुद्धि बलवान हो जाती है, मन प्रसन्न रहता है और हृदय में सिंह जैसा बल आ जाता है निस्वार्थ कर्म करने से। अकल से करें, ऐसा नहीं कि इधर कथा चल रही है उधर ठा ठक काय करो कि मैं निस्वार्थ कर रहा हूं। डंडा लेके पानी कूट रहा है, क्या कर रहा है? बोले मैं निस्वार्थ कर्म कर रहा हूं। अरे बेवकूफ, ये तो पानी कूट रहा है, क्या निस्वार्थ? लोग बैठे हैं कथा में और लोगों के स्कूटर या हम मोटरसाइकिल की सीट पर वो ब्लेड घुमा रहा है। बोले क्या करता? बोले मेरे को तो कोई मतलब नहीं, निस्वार्थ कर्म कर रहा हूं। तो बदमाशी के कर्म हुए। निष्प्रयोजन कर्म, पानी कूटना निष्प्रयोजन कर्म है। किसी की गाड़ी बाड़ी ऐसे अपने को कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन ऐसे बैठे किसी की चीज खराब कर रहे तो बदमाशी का कर्म है, बेवकूफी से बदमाशी के कर्म है। न बदमाशी के कर्म हो, न निष्प्रयोजन कर्म हो, न अंधे स्वार्थ से प्रेरित कर्म हो, कुशलता से कर्म हो, निस्वार्थ कर्म हो, ईश्वर के प्रीति के लिए कर्म हो और बात को हजम करने की ताकत हो। जय राम जी की। लड़के में ये सद्गुण थे, उस सद्गुणों के कारण लड़का राजा के आगे पसंद पड़ गया। राजा ने कहा, अभी ये महल चुनाई करने वालों के कारीगरों के साथ लेबर का काम करे नहीं, इस लड़के को मेरी पर्सनल सेवा में रखूंगा। और राजा से मिलना चाहता है, अब राजा उससे मिल रहा है। जयराम जी की। पर्सनल सेवा में, और जो पर्सनल सेवा में रहा तो महाराज उभरता छलकता खून था। किशोर अवस्था में जो बालक जैसा बनना चाहे उतना बड़ा महान हो सकता है। राजा विक्रमादित्य किशोरों को भर्ती करते थे, अपने अंगरक्षक किशोर रखते थे, 14 साल के लड़के, छोटी छोटी तलवार देकर बॉडीगार्ड तरीके लड़कों को रखते थे राजा विक्रमादित्य। किशोरों में बड़ा आदम्य उत्साह होता है और सच्चे भी होते, फिर जो जो बड़े होते और बेईमानों का संग होता है तभी कपटी बेईमान होते। महाराज वो बड़े राजा की इत्मीनान से सेवा करने लगा। देखते देखते राजा और रानी का मन जीत लिया। निष्काम व्यक्ति तो मन जीत लेता है, और निष्काम कर्म करने से हृदय पुलकित होता है, निष्काम कर्म करने से बुद्धि खिलती है, निष्काम कर्म करने से आत्मबल बढ़ जाता है। दिखावटी की सेवा में और सच्ची सेवा में जमीन आसमान का फर्क है। जो सच्ची सेवा करता है वो नहीं चाहेगा कि मेरा नाम अखबार में आए अथवा मेरी सेवा कोई देखे। कोई भी नहीं देखे, फिर भी अंतर्यामी परमात्मा तो देख रहा है, मेरा गुरुदेव तो देख रहा है। गुरु मंत्र मिला तब से मेरा गुरु मेरे साथ। तो निष्काम सेवा का फल उनके हृदय में पनपता है। महाराज उसने ऐसी सेवा की कि राजा रानी दोनों प्रसन्न रहते उस पर। और राजा का अंगत सेवा से, राजा की अंगत पर्सनल बातें, ये वो हिलचाल देखभाल, सारा योग्यता आने लगी। एक दिन राजा ने रानी को कहा कि अपने पास कोई संतान नहीं, अब उम्र भी हो गई, अब भतीजा भतीजा तो लोफर जैसा है, क्यों न इस लड़के कोई गोद में ले ले तो कैसा रहेगा। भले गरीब माई का है लेकिन हृदय का गरीब नहीं, सेवा का धन है इसके पास, तत्परता का धन है इसके पास, सहन शक्ति का धन है इसके पास, सदाचार का धन है इसके पास, ये बड़ा धनवान है, ये दिल का राजा है। इतना कुछ करता कुछ भी नहीं लेता है, दिल का राजा है, तो क्यों ना अपन इसको गोद ले ले। रानी बोलती है, तो मेरे मन की बात कही आपने, मेरे मन में तो हो रहा था लेकिन संकोच के मारे नहीं कह रहे थे। समय आया, उसको गोद ले लिया। कुछ ही दिनों में युवराज के पद पर उसका राज्य अभिषेक हुआ। रथ में बैठकर नगर यात्रा निकली तो उस भीड़ में बुढ़िया हाथ में छड़ी लेकर ताकती रही कौन राजकुमार है और राजा की जगह पर आएगा। तो उस बुढ़िया ने देखा, ये तो मेरा पुत्र, और पुत्र ने देखा, ये मेरी माँ। राजा को कहता है कि राजन, जिस माँ के थोड़े से उपदेश से मैं यहां तक पहुंचा,
और आज राजा साहब बना हूँ, उस माँ के चरण छूने जाना है मुझे, माँ को प्रणाम करने जाना है। राजा ने कहा, जिस माँ ने ऐसा निष्काम कर्म योगी को अवतार जन्म दिया है, उस माँ के चरण छूने तू अकेला क्यों जाएगा, मैं भी साथ में चलता हूँ। उस बुढ़िया के पास राजा और राजकुमार दोनों प्रणाम कर रहे हैं। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो, हनुमान की, हनुमान जी की जय क्यों हो रही, की सेवा है हनुमान जी के पास। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जो स्वार्थ के कर्म हैं वो अन्यत्र योनियों में ले जाने वाले, भटकाने वाले हैं, लेकिन जो परमार्थ के कर्म हैं, निष्काम कर्म है, यज्ञार्थ कर्म है, ईश्वर की प्रीति के लिए कर्म है, वो आदमी को मुक्त कर देते हैं, सुख स्वरूप ईश्वर से मिला देते हैं।
यज्ञार्थ कर्म, कर्म से कर्म को काटते हैं, जैसे कांटे से कांटा निकलता है ऐसे कर्मों से कर्म बंधन कटता है। ईश्वर सृष्टि में सहायक होने के लिए कर्म करें। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि स्त्री जो गर्भ धारण करती है वो भी यज्ञार्थ है। पीड़ा सहती है, कठिनाई सहती है, सृष्टि की परंपरा चलाने में साझीदार होती, दुख और कष्ट सह के बच्चे को पालती पोसती है, ये यज्ञार्थ कर्म है। लेकिन जब चाहती कि बच्चा मुझे सुख दे तो ये अन्यत्र कर्म हो जाता है। ये बच्चा मेरे को सुख दे, मौज मजा कराए, तो ये कर्म अन्यत्र हो जाता है, बंधन करता हो जाता है। सृष्टि की गहराई में देखा जाए तो सारे कर्म यज्ञार्थ हो रहे हैं, सेवा भाव से हो रहे हैं। सूर्य प्रकाश देता है, बदले में क्या लेता है? हवाएं चल रही है, बदले में क्या लेती है? धरती इतना इतना कुछ फल फूल अन्न धन आदि दे रही है, ये उसका यज्ञार्थ कर्म है। ऐसे चंद्रमा वस्तुओं को, फल फूलों को, अन्न को, औषध को पुष्ट करता है, यज्ञार्थ कर्म है। तो यज्ञार्थ कर्म करने से आदमी कर्म बंधन से छूटता है। यज्ञार्थ कर्म करने से आदमी में कर्म करने की योग्यता विकसित होती है। यज्ञार्थ कर्म करने से आदमी का मन प्रसन्न होता है और मति में बुद्धि में विलक्षण शक्ति आ जाती है। जितना जितना संकीर्ण जीवन है, संकोचित जीवन है, उतना उतना अन्यत्र कर्म है, और जितना जितना विशाल जीवन है, उदार जीवन है, उतना उतना वो यज्ञार्थ कर्म करता है। जितना जितना यज्ञार्थ कर्म करता है उतना उतना उदार होता जाएगा, महान होता जाएगा। मोहनलाल करमचंद गांधी एक व्यक्ति थे, लेकिन यज्ञार्थ कर्म करने लगे तो वो राष्ट्र के पिता माने जाते, एक बड़े व्यक्ति माने जाते, बड़े महात्मा माने जाते। हृदय में निस्वार्थता है तो आप बात करते तो आपकी बात में कुछ स्वाभाविक आनंद पावर प्रभाव रहता है, और हृदय में अति स्वार्थ भर के बात करो तो हृदय की धड़कन है ढीली लगेगी। यज्ञार्थ कर्म गीता के तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक चला था आज सुबह। यज्ञार्थ कर्म अर्थात निष्काम भाव से किए हुए सत्कर्म हम करते रहे तो बाबा जी हम खाएंगे पिएंगे क्या? तो कथा सुनाई थी कि एक राजा की सवारी देखकर एक लड़के ने माँ से कहा, मुझे राजा से मिलना है। तो माँ ने कहा, उसका महल बन रहा है, तू काम करना, कुछ लेना मत, दो टाइम रोटी तो देंगे ही, बाकी जो पैसे दे लेना मत, लिए नहीं तो धीरे धीरे वो मंत्री तक बात पहुंची। मंत्री ने राजा को बताया और राजा ने उस लड़के को अपना पर्सनल सेवक रख दिया, तो उसके रहने की खाने की व्यवस्था तो हो गई, ओढ़ने बिछाने की। आगे चल के वही लड़का राजकुमार पदवी पे बैठा और वही राजा बन गया। तो जो जो निस्वार्थता आती है त्यों त्यों आदमी की क्षमताएं विकसित होती। डॉक्टर राजेंद्र बाबू वकीलात करते थे, एक माई एक भाई ले आया उनके पास केस, तो मुकदमा ऐसा था कि जिस आदमी ने पैसे लिए थे वो मर गया था और उसकी जमीन गिरे थी, जमीन और मकान गिरवे रखा था, वो आदमी मर गया। अब उसकी पत्नी से अंगूठे अंगूठे करवा रखे थे, उस आदमी से भी साइन ले रखा था, एक आदमी डी बढ़ा दी, 10,000 का हो गया लाख। तो राजेंद्र बाबू ने देखा कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट तो ऐसे हैं कि मैं तुमको संपत्ति दिला सकता हूं, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है। वो आदमी मर गया और उसकी विधवा पत्नी और बच्चा, वो बेचारे दर दर की ठोकर खाएंगे और तुम्हारे बच्चों को अधिक पैसे मिलेंगे तो उनकी बुद्धि बर्बाद होगी। मैं ये केस लूं तो मुझे तुम 2-5,000 फी दे दोगे, मेरा नाम भी हो जाएगा कि केस जीत के दिया, लेकिन ये कर्म जो है बंधन करता है वो पैसा मुझे भी दुख देगा और तुम्हारे घर में आएगा तुम्हें भी दुख देगा, मैं ये केस नहीं लड़ूंगा। जिस माई के खिलाफ तुम मुकदमा दर्ज करा के डिग्री कुड़की लेना चाहते हो उस माई के एड्रेस में तुम्हारे कागजों से ले लेता हूँ, अगर तुमने उसको तंग किया तो मैं उसके तरफ से फ्री में लड़ूंगा और उसको जो कुछ पैसा देना होगा मैं दूंगा। उचित तो यह है कि तुम ये कागज फाड़ डालो, उसको क्षमा कर दो, 10,000 रुपए का तुम लाख ले रहे हो, मैं तो कहता हूँ 10,000 भी छोड़ दो। राजेंद्र बाबू की निष्काम भावना की ऐसी असर पड़ी कि उस आदमी ने जो फर्जी कागजात बनाए थे ये वो सब फाड़ दिए। लोक व्यवहार में देखा जाए तो एक ऐसा वकील कि अपने असील का भी घाटा कर दिया और अपना भी घाटा कर दिया, लेकिन बदले में कुदरत ने देखो भारत का प्रथम राष्ट्रपति उसी को बनाया। इब्राहिम लिंकन बड़ा गरीब लड़का था, पढ़ने जाता तो पैरों में चप्पल नहीं, टाट का टुकड़ा लपेट के सूतली से सीखे जाता, कई मील दूर बर्फीला रास्ता तय करके स्कूल में जाता पढ़ने को, कठिनाई से परीक्षाएं पास की, फिर वकीलात की, लेकिन वकीलात करनी तो सच्चाई से करूंगा। अब सच्चाई से वकीलात की तो महाराज फेल हो गए, वकील को तो झूठ बोलना है, तो झूठ नहीं बोले तो केस जमे नहीं। फिर किसी से पार्टनरशिप में धंधा किया तो बड़े सच्चे आदमी और वो दूसरा आदमी था वो चलता बुरजा था, घाटा पड़ गया। फिर चुनाव लड़ा तो चुनाव में भी सच्चा सच्चा बोले, चुनाव लड़े तो एक बार हार गया, दूसरी बार हार गया, तीसरी बार हार गया, चौथी बार हार गया, पांचवी बार हार गया। किसी 12-15 साल की लड़की ने इब्राहिम लिंकन को लिखा कि तुम चुनाव लड़ते हो तो चुनाव लड़ने के पहले तुम दाढ़ी रखो तो लेडीज भी तुमको वोट देती देगी, क्योंकि लेडीज को दाढ़ी बहुत अच्छी लगती है। मैंने सुना है ऐसा। उसने दाढ़ी भी रखी और अपना पुरुषार्थ भी था, खैर दाढ़ी रखने से सब प्राइम मिनिस्टर नहीं हो जाते, दाढ़ी तो कई भीखमंगे लोग भी रख लेते हैं। तो उसने दाढ़ी रखी और वो जीत गया। जीत गया तो अमेरिका का राष्ट्रपति और किसी छोटे से गांव में उस नन्नी मुन्नी बालिका को मिलने गया। तो वकीलात में बिजनेस में तो वो असफल सा रहा, लेकिन उसके जीवन में जो सच्चाई थी परोपकार था उसने इब्राहिम लिंकन को अमर कर दिया, राष्ट्रपति बना दिया अमेरिका का। तो जो कर्म निस्वार्थ भाव से है, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए है, परोपकार के लिए है, वे कर्म यज्ञार्थ हो जाते। यज्ञार्थ कर्म करने से आदमी कर्म बंधन से छूट जाता है और खुशी से जीवन जीता है। मनु महाराज ने कहा कमाई का 10वां हिस्सा सत्कर्म में लगाना चाहिए। जो कमाई का कुछ हिस्सा सत्कर्म में नहीं लगाते उनका तो कोर्ट कचेरी में झगड़ेबाजी में जाता है, बीमारियों में जाता है और कुछ गड़बड़ जाता है। ऐसे मैं कहता हूं कमाई का 10वां हिस्सा तो अच्छे कर्म में लगाना चाहिए, लेकिन समय का 10वां हिस्सा भी अच्छे में अच्छा जो परमात्मा है उसकी प्रसन्नता के लिए सत्कर्म में और ध्यान में लगाना चाहिए। अपने पेट के लिए, अपने बच्चों और पुत्र परिवार के लिए तो कुत्ता भी पूंछ हिला देता है, क्या बड़ी बात है। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में तू आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में, जिंदगी है चार दिन की, तू किसी के काम आना सीख ले। तन की शोभा है कि परहित के लिए इसका उपयोग, मन की शोभा है कि परमात्मा का चिंतन करे, धन की शोभा है कि परमात्मा के दैवी कार्य में काम आ जाए, और बुद्धि की शोभा है कि परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर ले। जो लोग अपनी बुद्धि को दूसरों को लड़ाने झगड़ाने में लगाते हैं, मन को दूसरी की निंदा चुगली स्थिति में लगाते हैं, शरीर को भोग भोगने में संसारी ऐश विलास में लगाते हैं, वे लोग अन्यत्र कर्म करते हैं तो उनको अन्यत्र योनि में जाना पड़ता है।